प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंध छठा अध्याय। कई महीने पहले श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद से हम चर्चा कर रहे थे। विषय था प्रह्लाद महाराज द्वारा उपदेश उनके सहपाठियों को, उनके मित्रों को, और इस चर्चा में हम छठे अध्याय में पहुंचे हैं। आठवें श्लोक तक पिछली बार हम रुके थे, तो इस बार नौवें श्लोक से हम आरंभ करेंगे। कह गृहेषु पुमान सक्तम आत्मानम अजित इंद्रियः स्नेह पाशैर् दृढ़ैः बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। बोलिए। अजितेन्द्रियः बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशे दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। माताजी, को गृहेषु पुमान्सक्ताम् आत्मानं मजितेन्द्रियः स्नेहपाशे दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। कह कौन सा गृहेषु गृहस्थ जीवन में पुमान मनुष्य सक्तम अत्यधिक आसक्त आत्मानम स्वयं आत्मा अजित इंद्रियः जिसने कभी इंद्रियों को वश में नहीं किया स्नेह पाशैहि स्नेह की रस्सियों से दृढ़ैहि अत्यंत शक्तिशाली बद्धम हाथ तथा पैर बांधा हुआ उत्सहेत समर्थ है विमोचितुम भव बंधन से छुड़ाने के लिए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ अपनों अर्थात पत्नी बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रह्लाद महाराज की आयु इस समय जबकि उन्होंने अपने सहपाठियों को उपदेश दिया वो केवल 5 वर्ष था। इतनी छोटी आयु में उनको न केवल इस संसार के बारे में परंतु भगवान के बारे में भी बहुत गहरा ज्ञान था। जिस प्रकार से प्रह्लाद महाराज ने इस संसार का विश्लेषण किया है ये तो बहुत आश्चर्य दिलाने वाली बात है, चमत्कार की बात है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग विद्वान लोग जिनको बहुत पुरस्कार मिले हैं जिन्होंने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है जिन्होंने कई ग्रंथों को लिखा है ऐसे लोग भी इस प्रकार का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। हाँ वो तो अपने मनगढ़ंत ढंग से विश्लेषण कुछ न कुछ करते रहते हैं तर्क करते रहते हैं परंतु सत्य को इतने मीठे और कम शब्दों में कहना ये बहुत विशेष बात है। तो प्रहलाद महाराज ने एक्सरे के चश्मे पहने हैं। जिस प्रकार से हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एक्सरे से हमारे अंदर हड्डियां क्या है, वो क्या हालत है, सब दिखाई पड़ता है, तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्तों की दृष्टि ऐसे होती है, वो सीधे इस संसार के भीतर से देख सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या सुख है, क्या दुख है, किस प्रकार से लोग जी रहे हैं। और प्रहलाद महाराज की दृष्टि, देखने की दृष्टि इसलिए है कि उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से ध्यान पूर्वक सुना था। भले जब उन्होंने सुना था वो उन अपने मां के गर्भ में थे, फिर भी ध्यान से सुना था, और इसलिए उन्हीं बातों को अब दोहरा रहे हैं। नहीं तो देखिए, एक 5 साल के बच्चे को संसार का क्या अनुभव है, उसने कितना देखा है संसार। केवल अपने राजमहल में रहता था प्रहलाद, और गुरुकुल में कभी कभी भेजे जाते थे वो, और गुरुकुल के बच्चे बच्चों के साथ में पढ़ाई करते थे, खेलते थे, तो और क्या अनुभव था। उन्होंने कौन सा अपना गृहस्थ जीवन संभाला, कहां उन्होंने विवाह किया, इस 5 साल की उम्र की बात में कर रहे हैं, तो इस उम्र में कहां उन्होंने विवाह किया था, कहां उनके बच्चे हुए थे, कहां उनको अवसर मिला था कि अनेक गृहस्थों को वो देखें कि अपने अपने जीवन में उनकी कौन सी समस्याएं आ रही हैं, फिर भी ये ज्ञान उनको हो गया। तो किसी चीज को अनुभव करना ये आवश्यक नहीं है, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो केवल श्रवण करने मात्र से जान लेता है। जो इससे कम बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है कि जब तक मैं अनुभव नहीं करूं मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों से, गुरु परंपरा से सुनता है और उसको समझ लेता है। ये बात कि हमें अनुभव करके ही किसी चीज को जानना चाहिए, ये निम्न श्रेणी का विचार है। एक संत के बारे में बताया गया है कि बहुत विद्वान थे, बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। तो जब वो एक दरबार में आए थे तो वहां की रानी ने एक चुनौती रखी थी तर्क के बारे में, और रानी हार गई। और उस समय उस रानी ने उस सन्यासी से कहा, जो बहुत कम उम्र के थे, कि आपको क्या मालूम है संसार के बारे में, आपने अनुभव तो नहीं किया है, इसलिए आपके तर्क जो हैं वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, आपने गृहस्थ जीवन का अनुभव नहीं किया है कि यहां कितना आनंद है, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो कि संसार के भोग में दुख है, ये है, वो है, तो आप पहले अनुभव करो फिर आप बात करो। तब ऐसे बताया जाता है कि इन्होंने अपनी आत्मा छोड़ी और एक गृहस्थ के शरीर में प्रवेश कर लिए, और वहां थोड़े समय के लिए वो जीवन का अनुभव किया, और फिर आ गए और कहा कि हाँ अब मैंने अनुभव किया, अब बताओ, फिर भी ये सही है, सत्य है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अनुभव हो जाए तो वो जो विचार है, वो श्रद्धा है, वो और भी दृढ़ हो जाती है। परंतु जो बुद्धिमान नहीं है, जो कहता है, बहाना देता है कि अनुभव करने से ही हम सीखेंगे, अनुभव करने के बाद भी नहीं सीखते हैं, तो फिर अनुभव का क्या लाभ। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रहलाद महाराज की तरह केवल सुन के जान लेता है। और प्रहलाद महाराज ने अब तक अपने उपदेशों में यह कह दिया है कि मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो बचपन से ही, कुमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति करना शुरू करे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। तो यहां से उन्होंने अपना उपदेश शुरू किया था कि 5 साल की उम्र से व्यक्ति को बड़े दृढ़ता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। फिर मनुष्य जीवन का मूल्य अपने मित्रों को समझाकर फिर वो इस बात पर आए कि कैसे लोग अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवाते हैं केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में, जो कि उनके लिए योग्य या उचित नहीं है। और वो कहते हैं कि इंद्र तृप्ति है क्या? ये इंद्र तृप्ति तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुच्छ सुख है। तो जीव को चाहिए कि वो उत्तम श्रेणी के आनंद को प्राप्त करे, न कि वो केवल इस निम्न श्रेणी के तुच्छ तथा कथित सुख से संतुष्ट रहे और इसकी खोज में भागे दौड़े इधर उधर। और अब प्रहलाद महाराज इस बात पर पहुंच रहे हैं ये कहने के बाद कि इंद्र तृप्ति के कारण व्यक्ति अपने घरेलू जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में बहुत आसक्त रहता है। और इसी बात को इस नौवें श्लोक में प्रहलाद महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि कौन ऐसा गृहस्थ है, को गृहेशु, वैसे यहां गृहस्थ की बात नहीं हो रही है, गृह मेधी की बात हो रही है, जो गृह में स्थित होकर, गृहस्थ गृह में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेता है, वो वास्तव में गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति कहलाता है। परंतु जो व्यक्ति केवल घरेलू जीवन में रहता है, अपने गृह में रहकर केवल इंद्रिय तृप्ति करता है, अपने संसार में बंधा हुआ रहता है, वो गृहस्थ नहीं कहलाता, वो गृह मेधी कहलाता है। तो यहां प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कह गृहेशु, वो कौन है, कौन सा गृहस्थ है जो पुमान, वो व्यक्ति जो सक्तम आत्मानम, जो बहुत अपने घरेलू जीवन से आसक्त है और अजित इंद्रिय, क्योंकि उसने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया है, इसलिए वो बहुत आसक्त है अपने घरेलू जीवन से, और जो उसका उसकी जो आसक्ति है वो किसके कारण है, स्नेह पाश दृढ़ेर बद्धम, स्नेह का पाश, स्नेह की रस्सी ने उसके बांध, उसको बांध के रखी है उस परिवार से, दृढ़ ही, बहुत दृढ़ है, सख्त है ये स्नेह का पाश। आगे चल के प्रहलाद और इसका विश्लेषण करने वाले, विस्तार में विश्लेषण करेंगे कि कैसे ये स्नेह का पाश जो है व्यक्ति को बांध के रखता है, व्यक्ति निकल नहीं सकता, निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उत्सहित विमोचितुम, विमोचितुम मतलब अपने आप को मुक्त करने वाला, मोचन। तो कौन ऐसा गृहस्थ है जिसकी इंद्रियां वश में न होने के कारण और जिसका हृदय स्नेह के रस्सियों से बंध जाने के कारण अपने आप को मुक्त कर सके, कौन है ऐसा गृहस्थ? दूसरे शब्दों में प्रहलाद ये नहीं कहना चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रह के हम मुक्त नहीं हो सकते, वो कहना चाहते हैं कि जब तक हम इंद्रिय तृप्ति से आ सकते हैं, हम इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक स्नेह के पाश से हम बंधे हुए हैं, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि ये कैसे किया जाए, जब श्री कृष्ण भगवद गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान की परिभाषा देते हैं, ज्ञान के लक्षण बताते हैं, उसमें ज्ञान के 20 लक्षण बताते हैं, उसमें 13वां लक्षण है असक्ति ही। यहां शक्ति ही शब्द का प्रयोग किया गया, जो इसका मतलब है कि बहुत लगाव होना, और असक्ति ही मतलब इसका इसके विपरीत, विरक्ति की भावना होना मन में। और आगे चल के प्रहलाद महाराज ये भी कहते हैं अनभिष्वंग पुत्रदार जरादिषु गृहादिषु, कि उसको अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने गृह, अपने धन आदि से आदि के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि व्यक्ति फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में अटका पड़ता है। तो फिर क्या व्यक्ति को पत्थर बनना चाहिए? अपने घरेलू जीवन में रहता है तो कोई भावना नहीं होनी चाहिए क्या? पत्नी को, बच्चों के प्रति, पति के प्रति, या पति को, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति कोई भावना नहीं होनी चाहिए? नहीं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं, ये 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में है ये लक्षण। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार का थोड़ा बहुत स्नेह रहना ये स्वाभाविक है, ये तो होगा जब तक हम संसार में हैं, ये थोड़ा बहुत स्नेह तो रहेगा। जब यहां विरक्ति की बात हो रही है, जब प्रहलाद ऐसे कह रहे हैं, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें अपने परिवार के सदस्यों से दुर्व्यवहार करना चाहिए, कि उनको, उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ सख्त बात करना है, मीठी बातें नहीं करनी है, कठोर बातें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये कच्चा समझ है। प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है, थोड़ा थोड़ी आसक्ति या थोड़ा स्नेह तो स्वाभाविक होता ही है, जब साथ में रहते हैं तो स्नेह होता है, परंतु भगवान में केंद्रित होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चार चीजें होनी चाहिए जिनसे व्यक्ति परिवार में रह के भी और परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम से रहते हुए भी निरासक्त हो सकता है और अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। वो कौन से चार चीजें हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं पहली बात यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नियमित रूप से रोज करना चाहिए, कीर्तन में और जप में। रोज 16 माला का कम से कम जप होना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन परिवार के सदस्यों को बैठकर करना चाहिए। दूसरी बात, केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए। ये दूसरी बात जो प्रभुपाद कहते हैं। तीसरी बात प्रभुपाद कहते हैं कि हमें घर में छोटा सा मंदिर बनाना चाहिए और घर में विग्रह की सेवा करनी चाहिए, भले वो विग्रह हो या तस्वीर हो जो कि विग्रह से अभिन्न है। यदि हम मंदिर के बहुत पास रहते हैं तो हमारे घर में ऐसे कोई मंदिर वगैरह की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा मंदिर काफी है हमारे लिए, क्योंकि हम यहां आके हम सेवा कर सकते हैं, यहां आके हम सत्संग में शामिल हो सकते हैं। परंतु जो मंदिर से इतना पास में नहीं रहते हैं, थोड़ी दूरी में रहते हैं, और जिनका बार बार यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है अपने पारिवारिक कर्तव्यों के कारण, तो ठीक है, जब संभव हो मंदिर में आइए, परंतु घर में छोटा सा मंदिर बनाइए यथाशक्ति यथासंभव, और वहाँ अर्चा विग्रह की सेवा कीजिए या जो अर्चा विग्रह की तस्वीर है उसकी सेवा कीजिए, आरती आदि कीजिए, घर में मंगल आरती कीजिए। और चौथी बात जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो ये है कि हर एक घर में रोज भगवद गीता, श्रीमद् भागवत आदि की चर्चा होनी चाहिए। तो ये चार चीजें हैं प्रभुपाद ने बताई हैं, चार सूत्र हमें ध्यान में रखने चाहिए। इन चार चीजों को करेंगे तो गृहस्थ को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि घर में अनुकूल अवस्था न हो, घर में बहुत विरोध हो, बहुत ही विकट परिस्थिति हो घर में कि भक्ति नहीं की जा सकती है, इतना विरोध है कि बस व्यक्ति का मन इतना विचलित रहता है, तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं फिर उसे संन्यास लेना चाहिए। लेकिन यदि अपने घर में भक्ति अच्छी तरह से चल रही है तो इस वातावरण को बनाए रखना चाहिए। तो ये कौन से चार चीजें हैं अब आप बताइए? पहली बात हरे कृष्ण महामंत्र दूसरों को करना चाहिए, नहीं हमें भी करना चाहिए, सारे परिवार के सदस्यों को करना चाहिए। कब? एक आध बार, कभी हफ्ते में एक बार, नहीं हर रोज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और वो भी दिन भर, है ना। कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा है तो हम दिन भर खाते रहेंगे नहीं, जितना आवश्यक है सही समय पर, सही मात्रा में, सही भाव से कृष्ण प्रसाद। कहने का मतलब है कि भगवान को भोग चढ़ा के खाना चाहिए, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, अर्चा विग्रह की सेवा अपने घर में, भले छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, भले मूर्तियां हो, भले मूर्तियों की तस्वीर हो, जो हमारे लिए अनुकूल है, जो संभव है, वो हमें करना चाहिए। चौथी बात, गीता और भागवत की चर्चा रोज घर में होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति ये चार चीजें करता है वो परिवार में रहते हुए भी बड़े अपने परिवार के सदस्यों से अच्छा संबंध बनाए रखने पर भी आसक्त नहीं होगा इस संसार से, उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी और वो जीवन के अंत में भगवान के धाम में जा पाएगा। तो ये अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र बिंदु केंद्र में नहीं रखता तो वो तो आसक्त हो जाएगा। तो यहां प्रहलाद महाराज बताते हैं, सबसे पहले जो व्यक्ति अजितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया है, उसके कारण उसे घरेलू जीवन से आसक्ति हो जाती है। क्यों बताइए? जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में नहीं है वही मात्र क्यों अपने घरेलू जीवन से आसक्त होता है? क्यों क्यों? क्यों? इंद्रियों का कार्य है, ठीक है। हाँ ठीक है। और कृष्ण भावना भावित नहीं होता और विषय के स्तर में आ जाता है। हाँ वो है। हाँ, इंद्र तृप्ति के लिए देखिए, जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में नहीं है वो क्या करना चाहता है? इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है ना। जिसकी इंद्रियों वश में नहीं है वो इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, तो घर क्या है उसके लिए? इंद्रियों को तृप्त करने के लिए एक साधन है, उसको एक स्थान मिल गया, एक अवसर मिल गया अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, इसलिए वो अपने घरेलू जीवन का दुरुपयोग करता है। वो सोचता है कि ये घरेलू जीवन केवल मेरे भोग के लिए है, क्योंकि उसके मन में विचार यही होता है कि जीवन का उद्देश्य ही भोग है, तो सारे दुनिया को वो भोग की दृष्टि से देखता है। अब सारे दुनिया का तो भोग नहीं कर सकता, परंतु अपने परिवार से तो शुरू कर सकते हैं। इसलिए प्रहलाद यहां कहते हैं अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिसने नहीं जीता है अजित, तो ऐसे व्यक्ति सक्त को गृहेशु पुमान सक्त, तो ऐसा व्यक्ति अपने घरेलू जीवन से आसक्त हो जाता है, क्योंकि ऐसे घरेलू जीवन में उसकी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। वैसे इंद्रियां तो पूरी तरह से तृप्त कभी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से एक अग्नि में घी या तेल डाला जाए तो अग्नि बुझ नहीं जाएगी, ठीक उसी प्रकार से जितना हम इंद्रियों को भोजन देंगे, आहार देंगे, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कोई भोग के कार्य करेंगे, उतनी इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। ये तृप्ति नहीं होती है वास्तव में। इसलिए ऋषभदेव महाराज नहीं, प्रहलाद महाराज ही कहते हैं, यन्मैथुनाधि गृहमेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजाम। वो कहते हैं कि जो कृपण लोग हैं वो इस प्रकार से अपने दुख उत्पन्न करने वाले तथा कथित सुख में रमण करते हैं। और ये है क्या वास्तव में? कंडू यनेन करयोर, कर मतलब हमारा, करयोर मतलब द्विवचन है, दो हाथों को हम घिसते हैं, कंडू यनेन करयोर, तो ये जो हमें थोड़ा सुख मिलता है ये संसार का भोग। ऐसा कीजिए सर, ऐसा कीजिए, क्या लगता है? थोड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या है ये घिसना? घिसने में क्या है? केवल घिस रहे हैं, बस ऐसा कुछ घिस रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये संसार का भोग ऐसे है। तृप्यंती न इह कृपणा बहु दुख भाजा, जो कृपण लोग हैं वो कभी भी इस घर्षण से तृप्त नहीं होते हैं, होंगे भी कैसे, संभव नहीं है। बहु दुख भाजाम, इसलिए इंद्र तृप्ति के कार्य जो है इससे केवल दुख ही बढ़ता है। तो गृहस्थ जीवन में अवश्य थोड़े भोग के लिए छूट दी जाती है, परंतु वो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के भीतर। और भगवान कृष्ण को अच्छी तरह से जीवन का केंद्र बिंदु बना के, तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता, वो सोचता है कि इंद्रियों को तृप्त कैसे किया जाए, फिर उसे पारिवारिक जीवन में जाने के लिए छूट मिलती है, फिर वहां जाके वो खूब भोग करने का प्रयास करता है, और आगे चल के धीरे धीरे से इतना बंध जाता है कि फिर उससे निकल नहीं पाता। इसलिए प्रहलाद महाराज यहां कहते हैं उत्सहेत विमोचितुम, नहीं हो सकता वो अपने अपने परिस्थिति से मुक्त। ऋषभदेव महाराज भी कहते हैं अपने पुत्रों को पुंसस्त्रिय मिथुनी भाव मेतर तयोर मिथो हृदय ग्रंथिम आहुहु, हृदय ग्रंथि, ये सारे संसार का जो मूल बंधन है वो पुरुष स्त्री के संग से शुरू होता है, जिससे कि हृदय ग्रंथि, हृदय का गांठ उत्पन्न हो जाता है, और ये गांठ को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऋषभदेव महाराज चेतावनी देते हैं कि हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए, भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। इस गांठ को काटना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रहलाद महाराज इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति न किए हुए अपने संसार में रहता है, अपने परिवार में रहता है, वो गृह मेधी होता है। मानो कि उसने एक व्रत लिया है कि वो इसको नहीं छोड़ेगा, मृत्यु के अंतिम दम तक उसकी आसक्ति बनी रहती है और पुनः उसे जन्म लेना पड़ता है कहीं एक ऐसे स्थान में जहां हो सकता है उसे परिवार से फिर से कोई संबंध मिल जाए। यदि उसने बहुत पाप किया हुआ होगा, हो सकता है उसी घर में किसी एक कीड़े के रूप में जन्म ले ले, क्या पता। तो ये है आसक्ति का फल, कितना खतरनाक है, कितना धोखे का है। इसलिए हमारी सारी आसक्ति भगवान कृष्ण के ऊपर केंद्रित करनी चाहिए और हमारे परिवार के सदस्यों से कृष्ण के संबंध से प्रेम करना चाहिए। सबको कृष्ण की भक्ति में लगानी चाहिए, जैसे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इन चार चीजों को करके, ये जानते हुए कि मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य यही है, शुद्ध कृष्ण भक्त हो जाना। तो प्रहलाद महाराज की बातें काफी भले कठोर लग रही हों, परंतु देखिए 5 साल का बच्चा कैसे बोल रहा है। जब कोई बच्चा ऐसे ऊंची फिलॉसफी या दर्शन बोलता है तो भले कठोर भी क्यों ना हो, लोग सुनना सुनना पसंद करते हैं। जब भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया और वो वहां चले गया। उधर हिरण्याक्ष की माँ और हिरण्यकश्यप की माँ भी दीति और हिरण्याक्ष की जो रानियाँ थीं वो सब बहुत शोक कर रही थी वहां पर। वह हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने जाके प्रवचन देना शुरू कर दिया, बढ़िया प्रवचन दिया, आत्मा शरीर इस संसार का संबंध। देखिए रावण हिरण्यकश्यप सब बड़े बड़े पंडित थे, परंतु पंडित होने से भी क्या लाभ। चाणक्य पंडित बताते हैं कि यदि कोई बहुत बड़ा विद्वान हो लेकिन दुष्ट हो तो उसे दूर ही रहना चाहिए, चरित्र भी देखना चाहिए, केवल उसका ज्ञान नहीं। वास्तव में सही ज्ञान है तो उसका चरित्र भी ठीक होना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान भी हो, तथा कथित विद्वान, लेकिन चरित्रहीन है, दुष्ट है, तो उसे दूर रहना चाहिए। तो रावण हिरण्यकश्यप एक दृष्टि से शास्त्रज्ञ थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन स्वभाव से दुष्ट थे। तो हिरण्यकश्यप प्रवचन देने लगा, बढ़िया प्रवचन। केवल वो प्रवचन पढ़ेंगे आप तो आपको पता नहीं चलेगा कि हिरण्यकश्यप बोल रहे हैं। आपको आप सोचेंगे कि कोई साधु बोल रहे हैं, कोई भक्त बोल रहे हैं, भगवान की इच्छा से सब होता है, सब जानते हैं वो, लेकिन काम उल्टा है। जानता है सब कुछ लेकिन करता है उल्टा। जब हिरण्यकश्यप ने उपदेश दिया अपने सैनिकों को, देखो भगवान विष्णु सब भक्तों के हृदय में रहते हैं, इसलिए भक्तों को मार डालो, फिर भगवान और कहीं नहीं जा सकते, कहां जाएंगे भगवान। बराबर सिद्धांत। जानते हिरण्यकश्यप कि भगवान भक्तों के हृदय में रहते, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, भक्त क्या, सब जानते हैं, लेकिन दुष्ट। तो फिर क्या फायदा। तो उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप प्रचार कर रहे थे यहां पर। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यमराज ने एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया था एक समय, जबकि एक राजा की मृत्यु हुई थी रणभूमि पर, और उसकी रानियां वहां रणभूमि पर आकर बहुत शोक कर रही थीं और राजा के शरीर को स्मशान भूमि के लिए छोड़ नहीं रही थी। तो यमराज ने देखा कि अरे ये कौन सी चीख आ रही है, रोने की आवाजें कहां यमलोक में आ रही हैं, अरे पृथ्वीलोक में है, अच्छा क्या हो रहा है पृथ्वीलोक में, यहां रानियां रो रही हैं। तो यमराज ने देखा कि मेरा काम रुक रहा है, यह राजा को अगली गति मिलनी है, इसका स्मशान में अंतिम क्रियाएं होनी चाहिए। तो यमराज ने एक छोटे बालक का रूप धारण करके उनको उपदेश देना शुरू कर दिया, और वो रानियां जो थीं इतनी प्रभावित हो गई। बच्चे ने बहुत डांटा उनको, आप मूर्ख हैं, आप नहीं जानते कि ये तो शरीर है, ये जड़ पदार्थों का बना हुआ है, आप केवल क्या किस चीज के लिए आप शोक कर रही हैं, वास्तव में ये तो आत्मा है। तो ऐसे ज्ञान उन्होंने दिया, तब रानियों की जो मन में एक सांत्वना हो गई, वो फिर समझ पाए कि हाँ वास्तव में सही है। हालांकि बच्चे ने उनको मूर्ख आदि कहा था, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा क्योंकि बच्चा है। बच्चे के मुख से ऐसे सब सुनना लोगों को अच्छा लगता, आश्चर्य लगता कि अच्छा इतना छोटा भक्त ऐसे ऊंची ऊंची बातें बोल रहा है। तो यहां पर भी देखिए प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के होने पर ऐसे ऊंची ऊंची बातें कह रहे हैं संसार के बारे में, इसलिए हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। जो बच्चे होते हैं ना उनके मन में कोई कपट नहीं होता, साफ होता है उनका मन, तो सही है वो ही कह देते हैं। तो प्रहलाद महाराज भी सत्य बोल रहे हैं, और श्री प्रभुपाद जी ये भी बोल रहे हैं कि कैसे हमें इस खतरे से अपने आप को बचाना चाहिए। इतिहास में कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जब व्यक्ति ने अपने परिवार के आसक्ति के कारण अपने सारे परिवार का ही नाश कर दिया, जिस परिवार से वो आसक्त है और उस परिवार को बचाने के लिए वो धर्म के विरुद्ध गया, तो उस परिवार का ही नाश हो गया। कौन से उदाहरण है बताइए, सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा आपके मन में आता है? दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र देखिए, सारा मूल कारण दोष किसका था, दुर्योधन का था कि धृतराष्ट्र का था? धृतराष्ट्र का था। दुर्योधन से ज्यादा दोषी थे धृतराष्ट्र। क्यों? नहीं आ सकती थी तो क्या हुआ? धृतराष्ट्र चाहते, वो राजा थे, वो आदेश दे सकते थे कि नहीं उनको लौटाओ, मैं राजा हूं, मैं बैठा हूं यहां पर, लौटाओ उनको, और दुर्योधन को मानना पड़ता अगर वो चाहते। हाँ दुर्योधन आगे चल के युद्ध भी करता, हो सकता है उसकी बुद्धि ऐसी थी, परंतु फिर धृतराष्ट्र का कोई दोष ना होता उसके बाद। परंतु धृतराष्ट्र ने विदुर की बात नहीं मानी, भीष्म की बात नहीं मानी, द्रोणाचार्य की बात नहीं मानी, पांडवों की बात नहीं मानी, कृष्ण की बात भी नहीं मानी, क्योंकि पुत्र के प्रति स्नेह इतना ज्यादा था। वो जानते थे कि मेरा पुत्र दुष्ट है, फिर भी अपना पुत्र है ना, इसलिए आसक्ति हो गई। तो जिस व्यक्ति के मन में ज्ञान है वो ये नहीं देखता कि मेरा पुत्र है या मेरा पुत्र नहीं है, गलत है तो गलत कहना चाहिए। हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद महाराज को डांट रहे होते हैं बाद में, इस कथा के बाद में जब प्रहलाद महाराज ऐसे उपदेश दे देते हैं तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है और प्रहलाद महाराज के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करने वाले थे। उस समय प्रहलाद ने कहा कि तुम तो बड़े दुष्ट हो, मेरे ही घर में मेरे ही पुत्र के रूप में जन्म लेकर मेरे ही खिलाफ कार्य कर रहे हो, एक परिवार के सदस्य बन के मुझके मेरे ऊपर ही तुम इस प्रकार का प्रहार कर रहे हो, मेरे शत्रु का आश्रय लेकर मेरे सारे परिवार का नाश करना चाहते हो। तो देखो जब किसी व्यक्ति के हाथ में या पांव में कोई बीमारी होती है तो कभी कभी उस पांव को या हाथ को काट डालना पड़ता है शरीर को बचाए रखने के लिए। आप में से जो डॉक्टर हैं आप जानते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं उसको। तो ऐसे कुछ हो जाता है तो पांव को काटने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहता है, नहीं तो वो सारे शरीर में फैल जाता है और व्यक्ति मर जाएगा। तो सारे शरीर को बचाने के लिए हाथ या पांव कभी कभी काटना पड़ता है। युद्ध भूमि पर ऐसे बहुत देखा जाता है कि अभी ऐसे घायल हो जाता है व्यक्ति कि उसी समय उसके हाथ पैर काटने पड़ते हैं, डॉक्टर ही काट देता है। तो उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप कहते हैं कि तुम तो मेरे शरीर के अंग हो लेकिन तुम्हारे अंदर ये बीमारी हो गई है, इसलिए तुम्हें अभी काटना होगा मुझे। तो हिरण्यकश्यप इस बात को समझता है, इस सिद्धांत क्या है कि अपना ही पुत्र कोई योग्य नहीं हुआ तो उसे त्यागना चाहिए। हाँ हिरण्यकश्यप की जो विचार थे वो उल्टी थी, उल्टी खोपड़ी के थे वो, इसलिए अच्छे व्यक्ति को बुरा मानकर वो त्यागना चाह रहे थे, बल्कि अच्छे लड़के को स्वीकार करना चाहिए था, परंतु उल्टा उनका मत चला। तो ठीक उसी प्रकार से धृतराष्ट्र को चाहिए था कि वो दुर्योधन को त्यागे। जो सदुपदेश धृतराष्ट्र ने प्राप्त किए थे को मानना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए, जानते हुए भी वो नहीं कर पाए। ये है स्नेह पाशाम दृढ़े बद्धय, स्नेह का पाश इतना सख्त था कि आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, आदमी भेद नहीं कर पाता कि ये आसक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है। गांधारी ने बहुत डांटा दुर्योधन को उस समय, अरे तुम इतना जिद करते हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम हमारे सारे कुल का नाश का कारण हो गए। गांधारी ने कह भी दिया लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को उतनी शक्ति नहीं आई। आसक्ति व्यक्ति को कमजोर बना देता है, सही है ना? आदमी कुछ कह नहीं सकता, आदमी गलत काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है केवल इस आसक्ति के लिए। तो हमें समझना चाहिए कि भले हम गृहस्थ आश्रम में क्यों ना हो, ये जो परिवार के सदस्य हैं ये मेरे नहीं हैं, ये कृष्ण के हैं, कृष्ण ने इनको यहां पर मेरे साथ रहने के लिए भेजा है और इनका देखभाल मुझे करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए कृष्ण के संबंध में, मेरा समझ के नहीं करना चाहिए। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति, जब ऐसे हृदय ग्रंथिम आहुहु, जब ये हृदय ग्रंथि, जब ये हृदय का गांठ बन जाता है, तो फिर ये गांठ सबसे बंध ली जाती है। अतो गृह, अपने गृह के प्रति, क्षेत्र अपने जमीन के प्रति या अपने आमदनी का जो साधन है उसके प्रति, सुत अपने बच्चों के प्रति, आप्त अपने रिश्तेदारों के प्रति, वित्तैर अपने धन के प्रति बहुत आसक्ति हो जाती है। जनस्य मोह, ये मोह हो जाता है, अहम मम, मैं और मेरा, ये धन मेरा है, ये पत्नी या पति मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, मेरा है अर्थात भोग करने का अधिकार मेरा है। तो इसलिए इससे व्यक्ति की बुद्धि फिर भगवान से हट जाती है। जब हम समझेंगे कि ये कृष्ण का परिवार है, कृष्ण की गाड़ियां हैं, कृष्ण के घर हैं, कृष्ण का धन है, सब कुछ कृष्ण का है, और इन सबको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तब सारे परिवार में प्रेम के संबंध बने रहेंगे। कठोरता की आवश्यकता नहीं है निरासक्त होने के लिए। गलत समझकर अपरिपक्व अवस्था में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ में कठोर व्यवहार करते हैं। भले प्रेम का व्यवहार हो, परंतु कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। और कभी कभी विचार करना चाहिए, काते कांता कस्ते पुत्र है, संसारो यम अतीव विचित्र है, कस्य त्वम कह कुत आयात, संसारो यम अतीव विचित्र है, कि ये कौन है, ये तुम्हारे प्रेमी है, पति है, पत्नी है, कौन है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये कौन है, ये किसका है, ये सब विचार करो। हे भ्राता, हे भाई, ये संसार बड़ा विचित्र है, इस संसार के संबंध बड़े विचित्र हैं, हैं दो दिनों के साथी, दो दिनों के मेहमान, फिर भी हम अपने आप को क्या नहीं समझते हैं, हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ में रहेंगे, कहते हैं ना ऐसा सब, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, मृत्यु में भी साथ में, जीवन में भी साथ में, हम आत्महत्या साथ में करेंगे और शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे। ये तो मनुष्य इतिहास है, देखिए कितने लाखों वर्षों से जितने गाने लिखे गए हैं, कविताएं लिखी गई हैं, सिनेमा तो होते ही हैं, वो तो अलग बात है, बस इसी इसी मोह के ऊपर सब आधारित है, सब मिथ्या के ऊपर आधारित। महाराज चित्रकेतु और उनकी रानी को भी ऐसी आसक्ति हुई थी परिवार के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, और बच्चे का देहांत हो गया और बहुत दुख हो गया, दोनों को रोने लगे पागल जैसे। और जब नारद मुनि की कृपा से वो जीव बच्चे के शरीर में फिर से आ गया थोड़े क्षणों के लिए, तो बच्चा उठ बैठा, अरे क्यों मुझे बुलाया आपने, मैं तो जा रहा था मेरे अगले जन्म के लिए। अरे बेटा, हम तुम्हारे माता हैं, तुम्हारे पिता हैं, हमको पहचानो। अच्छा, कौन से माता पिता हैं, सही मेरे माता पिता कौन है, वहां भी मेरे लिए माता पिता इंतजार कर रहे हैं जहां मेरा जन्म होना है अभी, और आप कह रहे हो कि आप भी मेरे माता पिता हैं, और आपके पहले मेरे और भी कोई माता पिता थे, और उसके पहले भी कोई माता पिता थे, तो सही कौन है, आप हैं माता पिता, ये हैं कि कौन है। देखिए हे राजन, हे महारानी, सुनिए, जिस प्रकार से एक नदी में छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, घास के तिनके होते हैं, वो बहते जाते हैं पानी के प्रवाह में, कभी कभी अलग हो जाते हैं, कभी कभी साथ में आ जाते हैं, कभी कभी ये देखा जाता है कि रास्ते में एक प्याऊ होता है जहां पानी मिलता है, तो वहां पर जो प्रवासी होते हैं, जो अपने अपने रास्ते में चल रहे होते हैं, वो मिलते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीते पीते थोड़ा विश्राम करते करते थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, बिछुड़ हो जाते हैं, कभी मिलते नहीं आप अपने आपस में किसी को। ठीक उसी तरह से काल और कर्म के प्रभाव से हम एकत्र आए हैं एक परिवार के रूप में, और काल और कर्म के लहरों से हम बिछुड़ जाएंगे। कौन सा परिवार है शाश्वत है, कितने परिवार हमारे हुए, कितने परिवार आगे होने हैं, लाखों लाखों जन्म बीत गए, हर एक जन्म में हमारा कोई परिवार था। प्रभुपाद जी बताते हैं एक जगह, माता पिता भाई बहन बच्चे शत्रु मित्र हर एक जन्म में हमारे हुआ, लेकिन मनुष्य जीवन है गुरु स्वीकार करने के लिए। प्रभुपाद जी ये कहते हैं अपने प्रवचन में, मनुष्य जीवन में ही हमारे गुरु हो सकते हैं जो हमें भगवान के धाम ले जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में हमें आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखनी चाहिए, केवल पारिवारिक जीवन में नहीं। फिर हम आसक्ति से आसानी से मुक्त हो सकते हैं और ऐसे निरासक्त होने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी, किसी को नहीं होगी कठिनाई। यह तो वैदिक सभ्यता है। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े हस्ती जैसे महाराज परीक्षित, पंच पांडव, जितने भी बड़े राजा हुए, इतने ऐश्वर्य के वातावरण में रहा करते थे। सारा जीवन उन्होंने ऐश्वर्य के वातावरण बिताया। महाराज भरत फिर भी जब समय आया परिवार को छोड़ने के लिए, बड़े आसानी से कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। इसलिए जब समय आया वो कृष्ण भावना में अपना जीवन बिताए हुए थे, तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़े अच्छी तरह से रह रहे थे, लेकिन जब बुलावा आया छोड़ गए, कोई तकलीफ नहीं हुई, परिवार के किसी सदस्य को भी तकलीफ नहीं हुई, साथ साथ सब चले गए। यह है वैदिक सभ्यता, यह है मनुष्य सभ्यता, मानव जीवन की सभ्यता। क्योंकि एक न एक दिन तो हम सबको अलग होना ही है। यदि हम अपने आप को तैयार नहीं करें तो मृत्यु हम सबको अलग कर ही देगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें अपने असली पारिवारिक जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए, जो कि गोलोक वृंदावन में है। यह अपना सच्चा फैमिली लाइफ है, सच्चा पारिवारिक जीवन। हमारे परिवार सही परिवार वहां है, तो इस असली परिवार के प्रति हमें आसक्ति रखनी चाहिए, कृष्ण और कृष्ण के भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, रुकेंगे, कोई प्रश्न है? हाँ, माइक दीजिए कुछ।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
आपने कहा कि धृतराष्ट्र इतने आंख से भी अंधे थे और वैद्य आध्यात्मिक दृष्टि भी अंधे थे, उनके कारण ही युद्ध हो रहा, ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब विदुर जी ने उनको लास्ट समय में कहा कि घर छोड़ना चाहिए, तब तुरंत उन्होंने सुन के घर छोड़ दिए। फिर वही धृतराष्ट्र लास्ट तक वही इसमें थे, फिर उन्होंने विदुर का सुन के घर कैसे छोड़ के, पांडु के घर में वो पले थे,
क्योंकि अब सब खत्म हो गया था उनके लिए, इसलिए और कोई चारा ही नहीं था उनके लिए। तो ये है कि जब विदुर आए धृतराष्ट्र के पास कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद उनको ले जाने के लिए, तब कैसे वो झट से निकल पड़े? पहली बात तो ये है कि अब उनका सब कुछ खत्म हो गया था, 100 पुत्र खत्म, सारा राज्य खत्म, कुछ नहीं था उनके पास। तो अब किसके लिए वो आसक्त रहे? क्या रहा? हार गए थे वो। जब आदमी हार जाता है तो मान लेता है। दूसरी बात, झट से नहीं माना, विदुर को बहुत कठोर वचन बोलने पड़े, तब जाके धृतराष्ट्र ने मान लिया। उनको कहा कि देखो इतने बुढ़े हो गए हो, पहले तो बचपन से तुम देख नहीं सकते, अब सुन भी नहीं सकते हो, अब तुम्हारे शरीर में सब जगह तरह तरह की व्याधियां हैं, और अब तुम ऐसे रह रहे हो भीम के हवाले, पांडवों के हवाले, जो छोटे छोटे तुमको भोजन के टुकड़े दे रहे हैं उससे तुम अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो, जिनको तुमने मारने का प्रयास किया उनके ही आश्रय में तुम जी रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो? देखिए कितने कठोर वचन। बुढ़ापे में कोई व्यक्ति ऐसे वचन सुने कैसे लगेगा उसे, क्या चुभेगा नहीं हृदय में? तो विदुर ने प्रेम से, प्रेम के कारण ऐसे कठोर वचन बोले, क्योंकि वो उनको मालूम था, क्योंकि इनकी आसक्ति इतनी ज्यादा है कि इतना सब खोने के बाद, हारने के बाद भी वो नहीं जाना चाह रहे हैं, इसलिए उनको काटने के लिए ऐसे कहना पड़ा। वो गुरु बने अब धृतराष्ट्र के, गुरु मतलब वजनदार, भारी, जो काटते हैं। गुरु का काम होता है काटना, हृदय ग्रंथि ही, इस हृदय ग्रंथि को काटना। तो इस हृदय ग्रंथि को काटने के लिए कभी कभी कठोर वचन का प्रयोग भी किया जाता है। हाँ जी, पीछे किस, हाँ जी। माइक चालू कीजिए।
हरे कृष्ण, आप बता दें कि भगवान विष्णु के उद्गम भगवान श्री कृष्ण है, और इसी श्लोक में भी बताया स्मर्तव्य सत्तम इसमें कि कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम है। लेकिन हम अभी जो टीवी पर जो श्री कृष्ण सीरियल जो चल रही है उसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के जो दशा अवतार है उसमें से ये का अवतार भगवान श्री कृष्ण है, तो इसमें फर्क आता है कि आप लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु के उद्गम भगवान श्री कृष्ण।
और पहले तो ये विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो अच्छा रहेगा, अभी जो विषय चला ठीक है, लेकिन हमारे सामने दो चीजें हैं, एक है टीवी, दूसरा है श्रीमद् भागवत। हमारे लिए प्रमाण कौन सा है?
ये जो टीवी सीरियल में बताया, उन्होंने भी लिखा है कि ये जो सीरियल है जो वो श्रीमद् भागवतम पर भी आधारित है।
हाँ ठीक है, लेकिन गुरु परंपरा से हम स्वीकार करेंगे तो हमें ये पूरी पूर्णतया ये ज्ञान मिल जाएगा। तो जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, यहाँ उपलब्ध है, प्रभुपाद जी के भगवद गीता श्रीमद् भागवत ये पढ़िए, फिर ये स्पष्टीकरण हो जाएगा। कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, विष्णु और कृष्ण एक ही हैं, केवल रूप अलग स्वीकार किए हैं, अलग भाव स्वीकार किए हैं, बस, अन्यथा कोई अंतर नहीं है। हाँ, और कोई प्रश्न?
और एक प्रश्न। हाँ, उसमें ये भी पता है कि नंद महाराज के घर में जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे,
विषय से संबंधित की जो भी है अभी के, हाँ, माइक माइक में पूछिए। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, हम शास्त्र पढ़कर भी आचरण क्यों नहीं कर सकते?
रोका तो किसी ने नहीं है।
मैं मर हो नहीं सकता ना, तकलीफ हो जाते बाद में और छोड़ देते हैं और पतन हो जाते।
हो नहीं सकता नहीं, जहां है चाह वहां है राह। हम नहीं कर सकते नहीं है, हम नहीं करना चाहते इसलिए हम नहीं करते। हमारी चाह उतनी मजबूत होनी चाहिए तो राह आ जाएगा। हाँ माइक।
हरे कृष्ण हम इस श्लोक में देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी ने इतने, पता चलता है जैसे उनने गृहस्थ जीवन का एक बहुत ही गहरा अध्ययन किया है, अनुभव किया है, इस तरह से वो बोल रहे हैं। लेकिन हालांकि वो गृहस्थ जीवन का उन्होंने अनुभव नहीं किया है और ना ही उनके गुरु नारद मुनि ने गृहस्थ जीवन का अनुभव किया है, तो फिर भी इतने गहरा विश्लेषण कर रहे हैं वो लोग, तो हम कैसे समझे? क्योंकि
भगवत तो है गुरु परंपरा,
तो
प्रामाणिक गुरु परंपरा को ज्ञान कहाँ से मिलता है? कृष्ण से और शास्त्रों से। भगवान को अनुभव है ना, भगवान को अनुभव है। और नारद जी ने कहां से सीखा था? नारद जी के गुरु कौन थे?
ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान था। ब्रह्मा जी आदि ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया था। और वैसे भी देखा जाए जो गृहस्थी में नहीं होते हैं ना, उनको कभी कभी गृहस्थों से ज्यादा पता होता है गृहस्थ जीवन के बारे में, क्योंकि एक गृहस्थ जो होते हैं वो अपने समस्या से उलझे हुए होते हैं, दूसरों की समस्या में समय नहीं होता। जो गृहस्थ जीवन नहीं होते हैं, सारे गृहस्थों की समस्या वो जानते हैं, तो सब बातें वो जानते हैं, तो अनुभव हो ही जाता है। भले अनुभव न करके भी सुन के ही बस पता चल जाता है।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
तो हिरण्यकश्यप वो ऐसा ही बहुत बड़ा पंडित था बोले देते हैं, तो भले ही वो माने ऐसा भौतिक दृष्टि से बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन वो भी वो ये बात जानता था भगवान कोई मार नहीं सकता है। तो फिर जो भक्त को मारने से कैसे भगवान को, भगवान के प्रति जो द्वेषी था, विष्णु द्वेषी और कंस रावण जो भी है, तो ये भी ये ज्ञान भी वो लोग को होना चाहिए था। तो क्या भगवान के माया शक्ति के कारण वो लोग ऐसे नहीं समझ पाते थे?
हाँ, माया शक्ति तो है ही, साथ साथ हिरण्यकश्यप का सोचने का कारण ये था कि भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, भक्तों का नाश हो जाए तो भगवान के लिए रहने का स्थान नहीं मिलेगा, फिर वो अपने वैकुंठ में जाए, भले वहां रहे, यहाँ नहीं आए। यह हमको तंग करने के लिए नहीं आए, यहाँ हम सम्राट हैं, हमारे इंद्र तृप्ति में वो हस्तक्षेप न करें। जब भक्त ही नहीं है तो भगवान क्यों रहेंगे यहाँ? हाँ, हिरण्यकश्यप का ये भी इतना पूर्ण नहीं था, क्योंकि भगवान तो हर अणु में रहते हैं, व्यक्ति के हृदय में तो क्या, हर अणु में रहते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, अणु तो क्या, अणु के भीतर जो कण होते हैं, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रभुपाद कहते हैं, जो उसके भी, उसमें भी भगवान रहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं। जब प्रहलाद ने, जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का सामना किया, कहा कि ये दुष्ट, तुम विष्णु विष्णु कह रहे हो और मेरी आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा गुरु हूं, और मेरे आदेश का पालन न करके मेरे शत्रु विष्णु को आश्रय लिया तुमने, तो जब ऐसे बात कर रहे थे, टोक रहे थे वो प्रहलाद को, तो प्रहलाद एक खंभे के ऊपर देख रहे थे और बड़े ध्यान से उधर देख रहे थे। अब देखिए, यदि आप किसी से बात कर रहे हो, आमने सामने दो आदमी खड़े हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं और उसका ध्यान वहां है कहीं दूसरे जगह, बड़े ध्यान से उधर देख रहा है, तो आपको लगेगा अरे मैं बात कर रहा हूं, वो ध्यान उधर लगा रहा है। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, क्या देख रहे हो? देखा खंभे में देख रहा है प्रहलाद, तो विष्णु की बात चल रही थी, क्या तुम्हारे भगवान उस खंभे में है? उस समय प्रहलाद खंभे को क्यों देख रहे थे? क्योंकि हिरण्यकश्यप नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो चुके थे खंभे में, तैयारी थी बाहर निकलने की, तो खंभे में प्रकट होकर दर्शन दे रहे थे प्रहलाद को, और प्रहलाद देख रहे हैं वहां पर नरसिंहदेव भगवान है, तो प्रहलाद देखे जा रहे हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं देख सकते थे। क्या देख रहे हो खंभे में, कौन है तुम्हारा विष्णु वहां है? हाँ है, देख रहा सामने है। प्रहलाद के लिए तो आमने सामने ही दिखाई पड़ रहा था, हिरण्यकश्यप को नहीं दिखाई पड़ा। तो हालांकि वो इतने बड़े पंडित थे, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि अधूरी थी, क्योंकि उनका हृदय द्वेष से भरा हुआ था। ठीक है, तो अब यहां कथा समाप्त करते हैं। हाँ जी, एक अंतिम प्रश्न, एक माइक में बोलिए। माइक चालू की।
पांच वर्ष से आपको भक्ति करना सिखाना चाहिए बच्चों को करके आपने बोला, तो अभी के
कलयुग हम नहीं बोले, प्रहलाद बोले।
हाँ, प्रहलाद बोले,
हमको दोषी मत ठहराइए आप।
हाँ, तो
हमारा दोष नहीं है।
कलयुग के बच्चे को पांच बरस से अभी भक्ति करेंगे क्या वो, अभी से वो हम बोले तो
कराएंगे तो करेंगे
नहीं, अभी तो
संस्कार देने पड़ेंगे ना इसके। हाँ, लिए कष्ट लेना पड़ेगा, कष्ट नहीं देंगे तो कैसे होगा?
क्योंकि पहले तो प्रहलाद महाराज तो
पहले बात तो घर में से टीवी बाहर होना चाहिए, फिर संस्कार की बात भी कर सकते हैं। घर में जब तक टीवी रहेगा तब तक संस्कार की बातें भूल जाइए, है ना? ये संभव ही नहीं है। माता पिता को कष्ट लेना चाहिए बच्चों को संस्कार देने के लिए, कष्ट दिए बिना कैसे होगा? बल्कि प्रहलाद महाराज ने कुमार अवस्था कहा है, लेकिन वास्तव में प्रहलाद का खुद प्रहलाद ने संस्कार कब प्राप्त किए? 5 साल की उम्र में, मां के गर्भ में थे तब से उन्होंने प्राप्त किए। तो प्रहलाद के उदाहरण से हमें जानना चाहिए कि जब से जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार जब होता है तब से शुरू होना चाहिए। और जो माता पिता होने वाले माता पिता उनको तो तैयारी और आगे से करनी चाहिए, फिर जाके अच्छे कोई अच्छी आत्मा आएगी जिसको पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, फिर ऐसे जन्म लेगी, फिर और इस जन्म में भी संस्कार बढ़ते जाएंगे, फिर बच्चा आगे अच्छा भक्त हो जाएगा। ठीक है।
अरे
हाँ जी,
आप बोलते टीवी घर से बाहर होना चाहिए, लेकिन टीवी पर ऐसे भी चैनल है कि जहाँ ये कीर्तन प्रवचन रहता है और भक्ति मार्ग में ही बताया जाता है। तो संस्कार टीवी पर केवल भक्ति मार्ग में बताया जाता है, तो क्या टीवी घर में रख के अगर ये भक्ति मार्ग के चैनल लगाए तो टीवी रखना गलत है?
ये भक्ति मार्ग के नाम पे बहुत कुछ और भी होता है। ये भक्ति मार्ग के टीवी में है, लेकिन जब सामने है तो दूसरे प्रोग्राम भी शुरू करते हैं देखना। पहली बात, घर में जब टीवी होता है तो परिवार के सदस्य स्वयं भी व्यक्ति देखने लगते हैं, चलो टीवी है तो चलो देख लेते हैं, चलो है ना, टीवी है दूसरे चैनल में, चलो घुमा लेते हैं। तो भक्ति चैनल है इसलिए इसके नाम में टीवी रखते हैं, फिर धीरे धीरे से भक्ति के अलावा दूसरे चैनल में भी चले जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आध्यात्मिक चैनल जो होते हैं उनके अंदर भी कौन प्रामाणिक है नहीं है ये भी सोचने की बात है। ऐसा नहीं कि कोई भी अपने भक्ति की बात कर रहा है तो वो प्रामाणिक है। तो वो सही गुरु परंपरा में आ रहा है क्या, वो सही सिद्धांत के अनुसार प्रवचन दे रहा है क्या, ये देखने की बात है। केवल सामने से सुनने के लिए तो सभी एक जैसे लगे लेकिन एक नहीं है। अनेक प्रवक्ता होते हैं जिनके सिद्धांत बिल्कुल गलत होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति के नाम में ऐसा कहते हैं कि आप भगवान हैं, हम भी भगवान हैं, हमें भगवान में लीन होना है, ऐसे कई चीजें होती हैं। तो इसको भक्ति समझकर सभी लोग सुन लेते हैं और बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए केवल प्रामाणिक जगह से हमें सुनना चाहिए। इसलिए इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा अगर ये हमारे घर में टीवी नहीं और भक्ति का चैनल नहीं दिखाई पड़ेगा तो बहुत नुकसान होगा, नहीं। मंदिर पास में है, जितना भी हमें चाहिए आध्यात्मिक पोषण मंदिर से मिल सकता है। और जो 4 बातें प्रभुपाद जी ने कही हैं वो हम करते रहें, भक्तों का संग करें, जितना भी आध्यात्मिक पोषण हमें चाहिए जीवन के लिए उतना मिल सकता है। क्या पहले जमाने में टीवी था? क्या लोगों की आध्यात्मिक चेतना अच्छी नहीं थी? बल्कि आजकल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा था। और भक्ति के चैनल में भी विज्ञापन कितने, हाँ ये पॉइंट अच्छा है कि वो विज्ञापन में क्या दिखाते हैं, कोई बिना कोई मतलब के कार्य दिखा रहे हैं। कोई वॉशिंग मशीन दिखाए किसी स्त्री को, क्या संबंध, कोई कुछ कुछ नहीं, कुछ भी है बस दिखा लेते हैं। तो ऐसे सब करते हैं, ये विज्ञापन, ये सब आजकल के अर्थव्यवस्था की बात है। ये तो बहुत कुछ कलयुग में अब ये टीवी देखने से चारों नियम भंग हो जाते हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसे सबसे पहले अपने घर से टीवी बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो प्रगति होना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन समस्या ये भी है कि घर में नहीं होता तो पड़ोस में जाके बच्चे देखने लगते हैं, ये भी समस्या है। इसके लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। सिवाय कि पड़ोसियों को भी कृष्ण भक्त बनाओ, यही एक है, जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे।